ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अराजकता और सांप्रदायिक विद्वेष मचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न देने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल में डेंगू के तीन प्रकार के वायरस है सक्रिय। हुमला के अलावा सभी जिलों में डेंगू का है संक्रमण। रोजगारी के लिए कतर भेजने की बात कहकर ठगी करने के आरोप में एक मलेशियाई नागरिक समेत चार लोग हुए गिरफ्तार। और अफ्रीकी देश चाड में आतंकी हमला, 40 सैनिकों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अराजकता और सांप्रदायिक विद्वेष मचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालीम के आज हुए दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कानून के खिलाफ किसी भी क्रियाकलाप को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि प्रहरी बल को प्रभावकारी बनाने और सुविधा बढ़ाने के विषय में कानून में आवश्यक संशोधन की तैयारी की गई है। राष्ट्रीय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थ में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने प्राकृतिक आपदाओं और अन्य स्थितियों का सामना करते हुए देश के शांति स्थापना अभियानों में तैनात होने के लिए सहभागी प्रहरी अधिकृतों को शुभकामना दी। प्रधानमंत्री ओली ने सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस की भूमिका की सराहना की और संगठन की क्षमता, ऊंचाई और कार्य को बढ़ाने का निर्देश दिया। सशस्त्र पुलिस की सेवा भावना की सराहना करते हुए समारोह में गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि वे विषम परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता, उच्च व्यावसायिक दक्षता का प्रदर्शन कर राज्य के जिम्मेदार सुरक्षा निकायों के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र पुलिस राज्य द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का सामना करती है, ये कहते हुए कि पुलिस का अस्तित्व और सक्रियता तभी सार्थक होगी जब राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। गृहमंत्री ने पुलिस से अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निरंतर राहत और पुनर्स्थापन के लिए काम करने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस ललितपुर के समन्वय और सहजीकरण में सुख और दुख में कांग्रेस आपसी सहायता का संदेश के नारे के साथ आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि पार्टी राहत सहायता वितरण में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने वालों को अत्यधिक महत्व देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा के दौरान भाषण देने के बजाय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कार्यक्रम में बाढ़ में मारे गए 46 लोगों और लापता 5 कर कुल 51 लोगों के परिवारों को 25,000 रूपये की राहत राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मानव अधिकारवादी नेता तथा पूर्व मंत्री पद्म रत्न तुलाधर की 6वीं स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने वाले रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को सार्वजनिक प्रसारण संस्था के रूप में काम करते हुए अधिक परिपक्व, सक्षम और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। आज नेपाल टेलीविजन कर्मचारी यूनियन द्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था गठन होने पर रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मंत्री गुरुंग ने कहा कि नेपाल की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एनटीवी वर्ल्ड की जरूरत है। शुभकामनाओं के आदान प्रदान के दौरान संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधि कार्याल ने बताया कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था की नियमावली रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के कर्मचारियों के सुझावों के आधार पर बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने उल्लेख किया कि ये गर्व की बात है कि देश को जल्द ही एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल में डेंगू के तीन प्रकार के वायरस सक्रिय हैं। डेंगू के वायरस के स्वरूप सेरोटाइप 1, सेरोटाइप 2, सेरोटाइप 3 सक्रिय हैं। ये जानकारी एपिडेमियोलॉजी तथा सर्वा रोग नियंत्रण महाशाखा के कीटजन्य रोग शाखा के प्रमुख डॉक्टर गोकर्ण प्रसाद दहाल ने दी। 7 साल पहले सेरोटाइप 1, सेरोटाइप 2, सेरोटाइप 3, सेरोटाइप 4 सक्रिय हुआ था। शाखा के प्रमुख डॉक्टर दहाल के अनुसार कार्तिक तक मच्छर सक्रिय रहेंगे, इसलिए खतरा है। हुमला को छोड़कर सभी जिलों में डेंगू का संक्रमण देखा गया है। वहीं देश भर 27,153 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं और संक्रमण से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कास्की में सबसे ज्यादा 7,000 लोगों में डेंगू का संक्रमण देखा गया है। घाटी में 5,748 लोगों में डेंगू का संक्रमण पाया गया है। रोजगार के लिए कतर भेजने की बात कहकर ठगी करने के आरोप में नेपाल पुलिस ने एक मलेशियाई नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लाहन नगरपालिका 4 स्थित एक होटल में सरकार के बगैर अनुमति के कतर भेजने की बात बताते हुए इंटरव्यू लेने के दौरान मलेशियाई नागरिक अंदाजी 51 वर्षीय मोहम्मद रिजवान बिन अब्दुल लहानतेस के, 42 वर्षीय रमाशंकर यादव, 25 वर्षीय राम भरत यादव और 39 वर्षीय सूर्य नारायण दाव को सोमवार गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इन्होंने कुछ लोगों से पैसे वसूले हैं। अर्घाची के संदिग्ध अर्क में प्रसाद के रूप में मांस खाने से बीमार होने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। संदिग्ध अर्क नगर पालिका वार्ड नंबर 1 तारामार्ग निवासी दीपक केसी ने रविवार को देवराली पूजा की। उसी पूजा के प्रसाद के रूप में मांस खाने से 35 लोग बीमार हो गए। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय अर्घाची के पुलिस प्रमुख डीएसपी चक्र बहादुर मल्ला ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश चाड में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये आतंकवादियों ने एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इस हमले में 40 सैनिकों की मौत की खबर है। चाड मध्य अफ्रीका में पड़ता है। उसके पड़ोस में नाइजर, नाइजीरिया, सूडान और लीबिया जैसे देश हैं। ये पूरा इलाका दशकों से आतंकी हमला का सामना कर रहा है। चाड के राष्ट्रपति कार्यालय ने आतंकी हमले की जानकारी साझा की है। राष्ट्रपति महामत इद्रिस देवी ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। ये हमला चाड के बरकारम द्वीप पर हुआ है। ये द्वीप नाइजीरिया और नाइजर के सीमा के बेहद करीब है। इन दोनों ही देशों में इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसे आतंकी समूह सक्रिय है, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी समूह ने हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लगभग 4 साल बाद चाड पर हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अराजकता और सांप्रदायिक विद्वेष मचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न देने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल में डेंगू के 3 प्रकार के वायरस है सक्रिय। हुमला के अलावा सभी जिलों में डेंगू का है संक्रमण। रोजगारी के लिए कतर भेजने की बात कहकर ठगी करने के आरोप में एक मलेशियाई नागरिक समेत 4 लोग हुए गिरफ्तार और अफ्रीकी देश चाड में आतंकी हमला, 40 सैनिकों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।